Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444. 2371-7117 and 2371-7107106. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी आप तक पहुंचाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। आपके जिज्ञासा से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका करजोड़ अभिनंदन।
नमस्कार प्राची, नमस्कार वैभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन।
चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस।
वी बिगिन विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi unveils projects worth over 42,000 crore rupees for agricultural sector, says PM Dhanadhanya Krishi Yojana and Mission for Atmanirbharta impulses schemes will transform the fortunes of millions of farmers in India. Benchmark domestic equity indices jump nearly 1.6% this week and US markets slump heavily after renewed trade tensions between America and China.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण किया। कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता भारत में लाखों किसानों की किस्मत बदलेगी। इस सप्ताह प्रमुख घरेलू सूचकांकों में लगभग 1.6% की वृद्धि हुई और अमरीका और चीन के बीच नए व्यापार तनाव बढ़ने के बाद अमरीकी बाजारों में भारी गिरावट आई।
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And beginning the show today, Prachi, we are joined in by Shankar from Faridabad.
Hello,
Shankar ji, apna sawal poochiye.
Namaskar, madam.
Namaskar.
Ye puchna chahunga ki sarkar ki taraf se to ghoshna ho gayi hai ki GST kami aa jayegi, par abhi to kisi bhi cheez mein kami mehsoos nahi ho rahi. Kahin bhi humne apni gaadi service kari to usme bhi oil engine oil bhi abhi usi rate mein hame mila jo last time hame mila tha. और इस समय तो लगता ही है कि दुकानदार अपनी मनमर्जी से ही बेच रहे हैं, उन पे कोई अभी तक कोई ऐसी सख्ती नहीं हो पाई है। आप लोग बताते हैं कि आपको रसीद लेनी चाहिए, जो दुकानदार रसीद नहीं देता और हमारी मजबूरी है, हमें अपना काम हमें तो अपना सामान लेना है, काम करवाना है, तो ऐसे में है क्या सरकार की तरफ से कुछ और कुछ उपाय है?
चलिए शंकर जी, इस पे आकाशवाणी ने ही पिछले चंद हफ्तों में जीएसटी के अधिकारियों को बुला के एक मुहिम चलाई थी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ जीएसटी अधिकारी आए, उनसे बातचीत करी है, तो मुझे बड़ी हैरानी है। देखिए, आप जिस आइटम्स का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफी आइटम्स में बदलाव किया गया है, पर शंकर जी मैं बताना चाहूंगा कि सभी आइटम्स में बदलाव नहीं किया गया है। मतलब अक्रॉस द बोर्ड हम कहें कि सिर्फ जो आइटम 28% में थे वो 18 में लाए गए हैं, जो 12 में थे 5 में आए हैं, कुछ 18 से 5 में आए हैं, कुछ 0 में भी गए हैं। तो इंजन ऑयल वगैरह जो है इन चीजों पे नहीं, जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, आपके किचन से संबंधित जितनी भी सामग्री है, उसके अलावा आपकी टॉयलेट्रीज हैं, आपका जो पैक्ड फूड आता है उस सब में बदलाव आया है। और अगर फिर भी शंकर, अगर आपको नजर आता है कि कोई दुकानदार, क्योंकि ये सूची ऑनलाइन बड़ी सरलता से उपलब्ध है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई दुकानदार आपको रेट बदल चुका है पर आप परंतु आपको पुराने एमआरपी उस पे दे रहा है, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का 1915 एक नंबर है और उनकी वेबसाइट भी है, वहां जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ऐसा मेरी संज्ञान में आया कि 2000 से ज्यादा कंप्लेंट कंज्यूमर हेल्पलाइन से जीएसटी के को बताई गई है और जिस पे कार्रवाई करी जा रही है। तो शंकर जी, मैं सलाह दूंगा, पहले आप ये कंक्लूड करने से पहले या इस नतीजे पे पहुंचने से पहले कि इस आइटम पे नहीं घटा है, आप एक बार सूची जो है उसको देख लें, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह ये मुझे लगता नहीं कि इस पे घटा है। आप जो आपका घरेलू इस्तेमाल का सामान है उस पे ज्यादा फायदा हुआ है, तो आप देख के, और फिर भी आपको नजर आता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उस पे कार्रवाई की जाएगी अगर कोई वेंडर या दुकानदार शरारत कर रहा है तो।
एब्सोल्युटली शरद जी, एंड टॉकिंग फ्रॉम एंड टॉकिंग अबाउट द जीएसटी बचत उत्सव, टू मूविंग ऑन टू अ कैपिटल आउटले एंड एन आउटले इन अ सेक्टर व्हिच द प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट अ हेडलाइन स्टोरी फर्स्ट। द प्राइम मिनिस्टर टुडे सेड दैट द इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इंपल्सेस विल ट्रांसफॉर्म द फॉर्च्यून्स ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। ही एम्फसाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू अचीव अ रैपिड डेवलपमेंट फॉर द 21st century, India reforms in country's agricultural system are essential. Prime Minister was addressing a gathering after launching, inaugurating and laying the foundation stone of multiple projects and schemes worth over 42,000 crore rupees in New Delhi. Mr. Modi said the, even the, in the past 11 years, India's agricultural exports have nearly doubled, while the food grains production has increased by around 90 million metric tons, while fruit and vegetable output has risen by more than 640 lakh metric tons alone. PM Modi said that India today ranks number one in the world in milk production, and it is also the second largest fish producer globally. Prime Minister Modi said 6 new fertilizer companies have also been set up in the country and 25 crore soil health cards were distributed to farmers in the last 11 years.
वैभव, मुंबई से सवाल आ रहा है रत्नाकर का। रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो, गुड इवनिंग मैडम।
गुड इवनिंग।
मेरा दो सवाल है छोटे। एक सवाल है कि जीएसटी की जो नई ये आ गई, कम आ गई, दो ब्रांच में जीएसटी हो गया, तभी फिर भी एफएमसीजी सेक्टर में जितना उछाल आना चाहिए था उतना तो अभी तक आया नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है और आगे एफएमसीजी सेक्टर कैसा रहेगा? और दूसरा सवाल है कि मैंने 2018 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था
जी।
और उसका रिडेम्पशन मैंने 2024 में किया, तो उसका कैपिटल गेन मुझे आ रहा है 2-3 लाख आ रहे हैं कैपिटल गेन, तो उसका टैक्सेशन कैसा हो जाएगा? टैक्सेशन के लिए वो 3 लाख का कैसा कैलकुलेशन हो सकता है? थैंक यू।
चलिए रत्नाकर जी, आपका पहला सवाल है कि जीएसटी आया पर उतना उछाल देखने को, शायद स्टॉक मार्केट्स का ये कह रहे थे, उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जीएसटी का अर्थव्यवस्था पे एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी कायम है। जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स में छूट दी गई, वो भी इस साल लागू है। आरबीआई ने रेट कट किया, अच्छा मानसून था, तो हमारे यहाँ सारे फैक्टर्स है। परंतु क्या होता है कि शेयर मार्केट रत्नाकर जी इंटरनेशनल परस्पेक्टिव को भी लेके चलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था, मैं आपको बता दूं कि हमसे आधी भी नहीं ग्रो कर रही है। और जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका है, यूके है, यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनकी ग्रोथ रेट बहुत खराब है। ऊपर से सारा जो टैरिफ का माहौल चला हुआ है और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो ये सब मिलके इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेडविंड्स, के भारतीय शेयर मार्केट के आगे हेडविंड्स हैं जो कि इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो इस वजह से आपको दिख रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है रत्नाकर जी कि हमारे जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो लगातार यहाँ पर बिकवाली का उन्होंने माहौल बनाया हुआ, बीच में कोई कोई दिन होता है जहाँ खरीदारी करते हैं, पर तो उससे भी प्रेशर आ रहा है। आपका दूसरा सवाल कैपिटल गेन से कनेक्टेड था, तो आपने जो शेयर्स बेचे हैं उसमें से आप अपनी जो परचेस प्राइस है वो निकालिए, जिस शेयर्स पे, जिस कीमत पे आपने लिए थे। एक सेक्शन 112A होता है, उसका 1,25,000 का, क्योंकि इक्विटी है, मैं मान के चल रहा हूँ लॉन्ग टर्म है, 1,25,000 वो घटाइए, बाकी बचे हुए पे आपको 12.5% रत्नाकर जी टैक्स देना है। तो सेल में से परचेस घटाइए, 112A का 1,25,000 का बेनिफिट घटाइए और उसमें से आप 12.5% बचे हुए में से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप रेडियो पे तो हम इस कैलकुलेशन को इसी माध्यम से आपको समझा सकते हैं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत वेटरन हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं, आप इसको समझ सकते होंगे। जी
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा एंड नाउ वी आर जॉइंड इन फ्रॉम बेंगलुरु कॉलिंग इज आयान। आयान वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Yeah, thank you very much, sir. This is the first time I am asking my question to Sharad sir. I've been listening to him for quite some time. So Sharad sir, I have a couple of questions for you.
Okay.
That is, recently in the Tata Capital IPO and LG Electronics IPO, I had applied for, and I have been allotted the shares for both of those. Now, the point is, the UPI mandate that I had given, there it is showing that the payment has failed. But I got email from CDSL, and especially for the Tata Capital IPO, the shares have been allotted in my DMAT account as well. Now, in this case, when I talk to the bank, they say that I don't have anything to do from my side, because it is their responsibility now to withdraw the fund, because I have given them the mandate. So I'm just trying to know that, do I have to do anything from my end? Should I email them or they will take care of it? The mandate is for a month. Thank you, sir.
Okay, Ayan, we first of all, since you're calling for the first time, I need to let you know that we do not answer company-specific queries. But I can answer your question in general, that when an IPO allotment takes place and the bank has not auto-debited or auto-withdrawn the amount, then I think you need to get in touch with the registrar of the said IPO or the merchant bankers as to have they allotted to you. If they have allotted, sometime the process also gets delayed. So it could be a delay. It might happen if you've got a confirmation that you have been allotted, then you should get in touch with the merchant banker or registrar, because the bank may not be able to help beyond a point. So you can get in touch and write an email to them, try calling them by searching their number on Google or whatever. And I'm sure if you're allotted, you'll get your shares. I really don't think there should be any reason why you should be deprived of your shares, Ayan.
जी, मुंबई से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू मैडम। मैडम, मुझे एक्सप्रेस सवाल है कि सपोज, जहां तक हम समझते हैं कि कोई कंपनी वीक कंडीशन में होती है तो वो एनसीएलटी में जाती है और उसको फिर बाद में रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाती है, तो एग्जैक्टली फिर वो दूसरे कंपनी में मर्ज होते हैं करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या रहती है और एग्जैक्टली वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या किया जाता है, एनसीएलटी का प्रोसेस किस प्रकार? मुझे मालूम है ये 10 इसमें बोलना मुश्किल है, लेकिन आप शॉर्ट में बताएंगे तो आई एम थैंकफुल टू यू।
अमित, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में है। जो लोग एनसीएलटी को नहीं जानते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसको बोलते हैं, प्राची और वैभव को भी बताना चाहूंगा। और इसमें क्या होता है कि अगर तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको लेना चाहता है कंपनी को, या कुछ शेयर होल्डर्स मिलकर, या कुछ लोग लेना चाहते हैं, कई बार क्रेडिटर्स ले लेते हैं, कोई बड़ा क्रेडिटर होता है तो वो वहां पर होता है। वरना क्या होता है कि इसमें एनसीएलटी उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर और उसमें, अमित ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, कि उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फिर बांटे जाते हैं जो जो वैल्यू रियलाइज होती है। मान लीजिए उसकी ऑक्शन की गई या किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो जो भी पैसा आता है उस पर ऑर्डर पास किया जाता है। सबसे पहले जो बाहर के क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों ने उधार दिया हुआ था, उनको दिया जाता है, और जो सामान के क्रेडिटर्स हैं, यानी कंपनी ने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने क्रेडिटर्स खड़ा करे थे, उनका ध्यान रखा जाता है। आपको ये जान के शायद ना हो, बहुत सारे लोगों के पास जानकारी, कि जो इक्विटी वाले होते हैं, जिनके पास इक्विटी होती है, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं, उनको सबसे आखिर में रखा जाता है। तो एनसीएलटी पूरी कोशिश करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आके इसको ले ले, या कोई और ले ले, मतलब पूरे उसके तरीके निकाले जाते हैं, और अंतिम रास्ता फिर यही होता है अनिल, कि इसके एसेट्स को लिक्विडेट करके और सब में बांट दिया जाए, क्योंकि कंपनी और ट्रिब्यूनल है, पर पूरी कोशिश ये करी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ संक्षेप में तो मैं इतना ही बता सकता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही विस्तृत ये सब्जेक्ट है, और कभी फिर सवाल करिएगा तो मैं इसको और ज्यादा खोल के और इससे आगे आपको बता पाऊंगा।
मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। हम जुड़ रहे हैं एनआर प्रसाद से, जो कि बेंगलुरु से हैं। एनआर प्रसाद जी, अपना सवाल पूछिए।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। गुड इवनिंग शरद जी, टू क्वेश्चंस। आई एम जस्ट होल्डिंग अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एंड दे हैव डन वेरी वेल। नाउ आफ्टर स्टारमर्स विजिट, print media said that its export will going to be tripled in the coming days. So should I hold these scripts, or sell it right now? If yes, how long? My second question is, now geopolitical issues by and large it's got settled. I just want to know which sector can do well in Q3 and Q4 of 25-26. Thank you. These are my two questions.
All right, Mr. Prasad, good questions. On the gems and jewelry sector, I would like to inform that the trade is not going to double or triple in the next few days, but in the next few years, first of all. Yes, I think India is looking for, after what has happened in America when 50% tariffs have been levied on our exporters. Obviously, we are looking for alternate markets, and UK is a market, not as big as the US. But then, yes, it will definitely help. But you should keep in mind that gems and jewelry sector has also been impacted by the sharp rise in gold and silver prices, because I met somebody who said, I normally buy on Karwa Chauth for about, I gift my wife, 20 grams. This time I only bought 2 grams. So that's also been the case. So I think some of the jewelers are also complaining, Mr. Prasad, of, fall in the sales. So you'll have to keep a watch on what's happening on the gold and silver prices and then take a long-term decision. Geopolitical factors, you said settled? No way. Russia-Ukraine conflict has got aggravated. Israel-Hamas, there is a deal on the table. We need to wait and see if that deal culminates into ultimate peace. I think it'll be a bit early to conclude that everything is over and done. But more importantly, you need to know about the sectors. I would put my bets on defense, number one. I would put my bets on FMCG, number two. And number three, I'll put my bets on renewable energy. So those are the three sectors you can keep in mind. There are others also. But for the moment, I'll advise you these three sectors. You can pick up your scripts very carefully. They should be very solidly backed by strong fundamentals and keep them for a long time, Mr. Prasad.
Our next caller from Chennai, we are joined in by Rajagopalji. Rajagopalji, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Rajagopalji, welcome to the show. Please ask your question.
Yes, sir. Thank you. Sir, first of all, Mr. Sharadji, my good evening wishes and to your other team members.
Good evening, sir.
Hello.
Good evening, Mr. Gopal.
My question is, sir, I'm having a DMAT account with the Indian Bank to deal with buying and selling of shares.
Mm-hmm.
And shall I withdraw money from the DMAT account? Am I eligible to do it, sir?
No, Mr. Rajagopalan, the DMAT account is basically meant for stocking your securities. You keep your shares in DMAT account. So I know what Mr. Rajagopalan, probably Prachi and Vaibhav, is talking about, because there's also a parallel account which is linked to your DMAT account. Because every time you buy and sell, the money comes in there. So Mr. Rajagopalan, to answer your question very precisely, if you have not or you're not likely to make any purchases of shares, that is buy any shares, then it's okay. You can withdraw money from there. But if you're likely to purchase, because what happens is if you make a purchase and if there is no money lying there, then your purchase can become infructuous. I mean, you might be called as a defaulter as far as securities is concerned. So if you're a regular investor, buyer of securities, it is better to keep some money there. But if you don't intend to buy in the near future, yes, you may withdraw. There is no legal provision which says that you cannot withdraw from your DMAT. I call it as DMAT linked bank account. Don't call it as DMAT account, because DMAT account is where your shares lie. I hope I have clarified. If you've got any further doubts, Mr. Rajagopalan, you're calling all the way from Chennai. We would love to hear back from you next time.
आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं मार्केट मंत्र से. रुक करते हैं कुछ खबरों की तरफ. प्रमुख घरेलू सूचकांक लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए. कल सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1294 अंक बढ़कर 82,501 पर बंद हुआ. निफ्टी 391 अंक बढ़कर 25,285 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार में बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.5% बढ़ा, लेकिन बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक स्थिर रहा. विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया कल डॉलर के मुकाबले सप्ताह के दौरान 9 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ. और दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं. योगेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
जी हाँ, मेरे दो सवाल हैं. मेरा पहला सवाल तो ये है कि अब जो पहले चेक वगैरह का इस्तेमाल होता था, तो यूपीआई और एनएफटी और ये सब आने के बाद से क्या ये चेकबुक वगैरह प्रासंगिक होती जा रही है? चेकबुक और साथ में डिमांड ड्राफ्ट का, इनका क्या अब ऐसा यूज है जो और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता देखने को?
ओवर टू यू शरद जी.
दूसरा सवाल ये,
योगेश, देखिए आपका सवाल, देखिए चेक्स अभी भी प्रचलन में है और आपको बता दूंगा अभी चेक के क्लियरेंसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसने चेक्स को फिर एक बार लाइमलाइट में लिया है कि अब आपको सेम डे क्लियरिंग मिलने लगी है। शायद आपके बैंक से आपको एक नोटिफिकेशन भी आया होगा कि सेम डे अब चेक क्लियर्स हो रहे हैं। तो चेक का अभी भी महत्व है और देखने में कागज का होता है, बड़ा अच्छा लगता है जब पेमेंट आती है। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो थोड़े अनपॉपुलर हो गए क्योंकि अब NEFT या RTGS करके आप सीधा पैसा किसी के बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्राफ्ट की जगह जरूर NEFT RTGS ने ले ली है, परंतु और UPI तो है ही है, परंतु चेक्स अभी भी प्रचलन में है और यह हाल का बदलाव चेक्स को और ज्यादा मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी रखेगा, इनको रेलेवेंट रखेगा।
वैभव, फेस्टिवल का सीजन है, उत्सव का सीजन है, तो क्यों ना बात हो एक और उत्सव की, बचत उत्सव।
एब्सोल्युटली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुए GST बचत उत्सव का पूरे देश में लाभ मिल रहा है। आइए सुने पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाले GST सुधारों पर एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के GST सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित GST दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। GST 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। GST में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
Moving on to some international news, U.S. markets declined yesterday after President Donald Trump escalated his trade conflict with China following Beijing's tightening of rare earth restrictions. Trump's latest move against China shocked markets and threatened further damage to already strained relations between the world's two largest economies. The Dow Jones Industrial Average slumped 878 points or 1.9% to 45,480. The S&P 500 lost 183 points. Or 2.7% to 6,553, and the Nasdaq Composite lost 820 points or 3.6% to 22,204. U.S. President Donald Trump has said that the United States will impose an additional 100% tariff on imports from China from next month in retaliation to new export controls Beijing is planning for valuable rare earth minerals. In a social media post, President Trump said the extra levies will come into effect on the 1st of November, adding that his administration will also impose its own export controls on critical software effective the same date.
शरद जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
My pleasure, thank you, sir.
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils projects worth over 42,000 crore rupees for agricultural sector, says PM Dhanadhan Krishi Yojana, and mission for Atmanirbharta Impulses schemes will transform the fortunes of millions of farmers in India. Benchmark domestic equity indices jumped nearly 1.6% this week. And U.S. markets slump heavily after renewed trade tensions between America and China. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.
Welcome.